नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
वो जो मेल मिला पुकराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। वो जो मेल मिला पुकराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए। स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे, सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, करो इनका पालन। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि जब आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं, तो निश्चय ही हमें पत्र के द्वारा अवगत कराएं कि आपने किस प्रकार की आशीषों को प्राप्त किया है, ताकि आपके साथ हम भी प्रभु को धन्यवाद दे सकें। मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज हम रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय से अपने अध्ययन को देखेंगे। हम देख रहे हैं कि अध्याय 8 का यह सारांश है, पवित्रीकरण, जिसे हम परमेश्वर के लिए पृथक किया जाना कहते हैं, और सुरक्षा और परमेश्वर से लगाव। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान को पाप के मध्य परमेश्वर के लिए जीवित रहना है। पाप हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं करेगा, परंतु एक पापी जिसे मसीह में धर्मी ठहराया जा चुका है, उसमें स्वयं में ऐसा कुछ नहीं कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करे। आज हम अध्याय 8 में नया मनुष्य, नई सृष्टि, नई देह और नया उद्देश्य के विषय में देखेंगे। मित्रों, यह अध्याय हमें पवित्रीकरण की परिपूर्णता में लाता है। सच तो यह है कि इस अध्याय में 3 महान विषय हैं, पवित्रीकरण, सुरक्षा और परमेश्वर विलगाव का अंत। इस अध्याय में सामर्थ्यहीन पवित्रीकरण के विपरीत सामर्थी पवित्रीकरण है और इस अध्याय में हम हमारे पवित्रीकरण के निमित्त परमेश्वर की नई व्यवस्था को देखते हैं। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण पत्री में तो मैं अपने आप को असमर्थ मानता हूँ, परंतु यहाँ विशेष करके मैं इन तथ्यों को समझने और समझाने में अपने आप को पूर्ण रूपेण असमर्थ महसूस करता हूँ। यह पत्री ऐसी महिमामय एवं महान है कि हम जो कर सकते हैं वह केवल यह है कि मूसा की नाई जलती हुई झाड़ी के निकट बिना जूता पहने और बिना सिर ढांके खड़े रहें। इसकी महिमा और महानता को पूरी तरह न समझे और न पहचाने। प्रियो, अध्याय 8 रोमियो की पत्री की पराकाष्ठा है। यह तथ्य इस महान पत्री की टीकाकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। स्पेंसर ने कहा, यदि पवित्र शास्त्र अंगूठी है और रोमियो की पत्री कीमती पत्थर, तो अध्याय इसका चमकीला बिंदु है। किसी ने यह भी कहा, हम इस अध्याय में दंड की क्षमा के साथ प्रवेश करते हैं और पृथकीकरण में बचकर अंत करते हैं, और इसके मध्य उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे मित्रों, इससे अधिक अच्छा आपको और क्या चाहिए? हम देखते हैं कि परमेश्वर की संतान को इसी जीवन में आनंद और शांति मिलती है। उसे पाप के ठीक मध्य परमेश्वर के लिए जीवित रहना है, पाप जीवन शैली को प्रभावित न करे। यहाँ यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि एक धर्मी ठहराए गए पापी में ऐसा कुछ नहीं कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर ले। मेरे मित्रों, हम देख चुके हैं कि नए स्वभाव में अपना सामर्थ्य नहीं है और पुराने स्वभाव में कुछ अच्छा नहीं था। अब परमेश्वर की संतान परमेश्वर के लिए कैसे जिए? पौलुस ने सहायता की पुकार की थी, 7 अध्याय उसके 24 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, अर्थात परमेश्वर के लिए जीने में मेरी सहायता कौन करेगा। 7 अध्याय के अंत में पौलुस ने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मेरे मित्रों, अब 8 हमें वह विधि समझाता है जिसके द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं। यह अध्याय हमें पवित्रीकरण के लिए पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट करता है। इस अध्याय में 19 बार पवित्र आत्मा का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय से पूर्व केवल 5 अध्याय के 5 पद और 7 अध्याय के 6 पद में पवित्र आत्मा के 2 ही संदर्भ आए हैं। इस पत्री में हम धन्य त्रिएकत्व के कार्य को देखते हैं। प्रियो, पिता परमेश्वर का सृजन कार्य रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 2 अध्याय के 20 पद में हम देखते हैं। पुत्र परमेश्वर का उद्धार करता या उद्धारक कार्य रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 21 पद से 7 अध्याय के 25 पद में देखते हैं, और तब पवित्र आत्मा परमेश्वर का शोधन कार्य पद 1 से 39 में पढ़ते हैं। यहाँ 8 में हम पवित्र आत्मा और सिद्ध पवित्रीकरण अर्थात शोधन को देखते हैं। परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीना आवश्यक है, जैसा पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा है 5 अध्याय उसके 18 पद में, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी हाँ, विश्वासी के नवजीवन में पवित्रीकरण पवित्र आत्मा का कार्य है जो उसे पाप की शक्ति से मुक्ति दिलाता है। पाप में वास करते हुए भी और संपूर्ण जीवन परमेश्वर की इच्छा पूरी करवाता है। आरंभिक 11 पदों को गार्डेट ने शीर्षक दिया है, पाप और मृत्यु पर पवित्र आत्मा की विजय। तो आइए हम रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे मित्रों, लिखा है वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यह वास्तव में इस पद का भाग नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शास्त्री ने इसे इस पद में से निकालकर यहां संदर्भित किया है। इसकी वास्तविक स्थिति वही है। इसका शाब्दिक अर्थ है, अतः अब एक ही दंड की आज्ञा नहीं। यह प्रेरित वचन 7 में पौलुस के विफलता के अनुभव के पश्चात भी विश्वास दिलाता है कि वह उद्धार से वंचित नहीं था। मेरे मित्रों, वे जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तथापि वह मसीही जीवन का आनंद लेने में सामर्थ नहीं था। वह असफल था, वह एक अभागा मनुष्य था। परमेश्वर चाहता था कि वह इस जीवन में आनंदित रहे। उसे यह अवस्था कैसे प्राप्त होगी? अगले पद पर ध्यान दीजिए, रोमियो 8 उसके 2 पद में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। यह शब्द क्योंकि इस अध्याय में 17 बार काम में लिया गया है, क्योंकि यह शब्द इस संपूर्ण अध्याय को जोड़ने वाला संयोजक है। यह वह शब्द है जो मस्तिष्क से श्रम की मांग करता है। हमें प्रेरित पौलुस के तर्क को समझने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री के एक महान टीकाकार ने कहा है कि यदि आप पौलुस के तर्क को समझ नहीं सकते तो आपको उसकी बात सही सही समझ में नहीं आएगी। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। आत्मा की व्यवस्था से अभिप्राय मात्र यह नहीं कि व्यवस्था का सिद्धांत, वरन आत्मा द्वारा अभ्यास में आने वाला अधिकार। जीवन की व्यवस्था का अभिप्राय पवित्र आत्मा से है जो जीवन दाता है, क्योंकि वह मूल रूप से जीवन है, वह जीवन का आत्मा है। मसीह यीशु में इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा मसीह यीशु के साथ सर्वांगीण एकता में है, क्योंकि विश्वासी मसीह के जीवन में सहभागी हैं, अतः वह विश्वासी को स्वतंत्र कर देता है। तब पापी की और मृत्यु की व्यवस्था या हमारे पुराने स्वभाव पर पाप का अधिकार था, जो परमेश्वर की सहभागिता के कारण पूर्ण रूपेण विच्छेदित हो जाता है। नया स्वभाव तो बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम नहीं था, यह तो उच्च अधिकार और सामर्थ था जिसके द्वारा यह काम संपन्न हुआ। यह पवित्र आत्मा है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा इस नए स्वभाव में क्रियाशील होता है जो मसीह के जीवन में जीवित रूप से जुड़ा हुआ है। रोमियों की पत्री अध्याय 7 में व्यक्त मनुष्य को मृतक देह से जुड़ा हुआ था दर्शाया गया है, अब वह जीवित मसीह से जुड़ा हुआ भी है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। मित्रों, यहाँ हमारे पास संपूर्ण विषय का सार है। मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उन अनेक बातों को प्रकट करेगी जिन्हें समझने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था के लिए असंभव बातें जो देह के द्वारा असंभव थी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप की देह के स्वरूप करके भेजा और पाप के संबंध में उसने देह में ही पाप निवारण किया, जिससे कि व्यवस्था की धार्मिकता हम में जो देह के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए। मेरे मित्रों, मनुष्य में धार्मिकता उत्पन्न करना व्यवस्था के लिए असंभव कार्य था। यह व्यवस्था का दोष नहीं है, दोष वास्तव में मनुष्य में था, उसकी देह में वास करने वाले पाप का था। रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मेरे मित्रों, यह धर्म शास्त्र और सर्वथा सत्य है। मनुष्य पूरा का पूरा भ्रष्ट है। इसका अर्थ यह नहीं कि सड़क पर चलने वाला कोई मनुष्य या पड़ोस में रहने वाला कोई जन या पाप में लिप्त कोई मनुष्य, यह आप हैं और मैं हूं। पवित्र आत्मा असंभव कार्य करता है। पवित्र आत्मा तो दुर्बल और पापी देह में पवित्र जीवन उत्पन्न कर सकता है। मैं एक अति पारिवारिक उदाहरण द्वारा समझाना चाहता हूं। एक गृहिणी ने नाश्ते के बाद दिन के भोजन के लिए खाना स्टोव पर चढ़ाया। इसी बीच उसकी किसी सहेली का फोन आ गया और बातें करते करते बहुत समय लग गया। तभी उसे रसोई से कुछ जलने की गंध आई। उसने अपनी सहेली से अनुमति ली और फोन बंद किया। अब वह रसोई में गई तो खाना जलकर कड़क हो गया था। उसने चम्मच से खाना निकालने का प्रयास किया तो क्या हुआ कि वह असफल रही, अतः उसने कलछी से उसे निकाला। चम्मच तो अच्छा था परंतु भोजन खराब हो गया था, वह जल गया था, अतः वह काम जो चम्मच नहीं कर पाया वह कलछी ने किया है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार व्यवस्था अच्छी होती हुए भी सामर्थ्य नहीं थी, वह हमें उबारने में असफल रही, अतः एक नई व्यवस्था लाई गई, पवित्र आत्मा। व्यवस्था जिस काम को करने में असफल थी उसे करने में आत्मा सामर्थी था। इस कारण आपको और मुझे मसीही जीवन जीना है, यही नई व्यवस्था है। हमें अपने प्रयासों द्वारा स्वयं को उबारने का प्रयास नहीं करना है, हम कभी भी सफल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, हम संकल्प करके कह सकते हैं मैं और अधिक अच्छा काम करूंगा। हम सब ने यह संकल्प अवश्य ही किया होगा, परंतु क्या हम सफल हुए? क्या हमने वही पुराने काम नहीं दोहराए? मेरे मित्रों, परमेश्वर इस नए असफल काम को करने में सफल हुआ। उसने अपना पुत्र भेजा, पापी देह की समानता में अपना स्वभाव सीमित किया। मसीह की देह हमारी देह के सदृश ही थी, परंतु उसमें पाप नहीं था। देखिए, इब्रानियों में लिखे गए पत्री में 2:14-16 पद में, इसलिए कि जब लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। और तब इब्रानियों के पत्री 7:26 पद में वह कहता है, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। इसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों 10:5 पद में, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। मेरे मित्रों, हमारी देह में पाप की जड़ तक पहुंचने की यह परमेश्वर की विधि थी, वरन हमारे मन एवं आत्मा में भी। वह पापी देह को क्रूस पर दंडित एवं घात करने में सफल हुआ, जिससे कि उसे मनुष्य पर अधिकार न रहे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर पाप के निवारण में सफल हुआ, मसीह हमारे समान बना। कैसा अनुग्रह उसने प्रदर्शन किया! हमारे देह में पाप निकम्मा ठहराया गया। अनेक निष्ठावान मनुष्यों के इस विश्वास के उपरांत भी कि पाप का हमारी देह से निष्कासन हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ। हमारी देह को मुक्ति पाना है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 15:44 पद में पौलुस कहता है कि आत्मिक देह जी उठती है। आज पवित्र आत्मा देह में पाप का मुक्ति दाता है। अनेक विश्वासी सोचते हैं कि मसीह आकर हमें इस पापी संसार से ले जाए तो अच्छा हो। मैं तो चाहता हूं कि वह इसी समय आ जाए, परंतु इससे भी अच्छी बात एक और है, वह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम इस पापी संसार में जहां भी हैं वहां मसीही जीवन आनंद से जिए। मेरे मित्रों, यह तो और भी अधिक अद्भुत बात है। हमारे प्रभु यीशु ने अपनी महायाजक की प्रार्थना में कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:15 पद में, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जी हाँ, यही तो विजयी जीवन है कि व्यवस्था की विधि पूरी की जाए। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा आज्ञा पालन का जीवन देता है, जिसकी आज्ञा व्यवस्था ने तो दी परंतु ऐसा जीवन दे नहीं पाई। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, परंतु निर्णय हमारा है। जी हाँ, अगला पद हमें एक नए संघर्ष का परिचय देता है। यह संघर्ष हमारा नहीं, यह पवित्र आत्मा और देह का परस्पर व्यवहार है। आइए हम पढ़ें रोमियों की पत्री 8:5 पद, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मैं एक बार एक परिवार में गया हुआ था और वहां पर मैंने देखा कि उसने अपने पुत्र को कई बार पुकारा परंतु वह नहीं आया। उसने कहा, यह युवक मेरी बात नहीं सुनता है। पौलुस की भाषा भी ऐसी ही है, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हमने अध्याय 6 में इसे देखा है। मेरे मित्रों, यदि आप दैहिक बातों के अभ्यास में हैं और देह की बातों के आज्ञाकारी हैं और नया स्वभाव आपको झिड़कता नहीं, तो आप में नया स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाले आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। विश्वासी को नया स्वभाव प्रदान किया जाता है और वह अब नए स्वभाव के अधीन होता है, और यह इच्छा का कार्य है। यह एक नया संघर्ष है जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। शरीर प्राकृतिक मनुष्य की व्याख्या करता है। यह सदैव शरीर ही रहेगा। शरीर को बदलना परमेश्वर की योजना में नहीं है। इसकी अपेक्षा वह एक नई अवस्था लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:6 में हम पाते हैं, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जी हाँ, एक नए संघर्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह नया स्वभाव नहीं है। विश्वासी देह में वास करते पाप पर प्रभुता के लिए संघर्षरत रहता है। यह पवित्र आत्मा है जो पुराने स्वभाव पर विजय पाने के प्रयास में है। एक बालक स्कूल से घर आ रहा था। मार्ग में उसे एक लफंगे ने मारा। वह चित पड़ा था और वह लफंगा उसे मार रहा था। वह हताहत भूमि पर पड़ा था कि उसने अपने बड़े भाई को आते देखा। उसके बड़े भाई ने उस लफंगे को संभाला और यह बालक एक पत्थर पर बैठकर अपनी चोट सहला रहा था। विश्वासी के पास पवित्र आत्मा है कि उस लफंगे देह को संभाल ले। मैं बहुत पहले से ही सीख गया हूं कि मैं उस पर जयवंत नहीं हो सकता, अतः मुझे उसे ऐसी शक्ति के सामने कर देना है जो यह काम कर पाए। मेरे मित्रों, विश्वासियों में आत्मा अंतर्वास करता है। वह हमारे लिए ऐसा करना चाहता है और वह सामर्थ्य है। लिखा है शारीरिक व्यक्ति प्राकृतिक मनुष्य की व्याख्या है। इफिसियों के पत्र 2:1-3 में पौलुस यह चित्रण प्रस्तुत करता है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं से अर्थात लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। यह हम सब की उद्धार से पूर्व की दशा थी। शरीर से अभिप्राय है मन। कुलुसियों के पत्र 1:21 में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। इसका अर्थ है संपूर्ण व्यक्तित्व जो परमेश्वर से विलय था। प्राकृतिक मनुष्य संघर्ष करता है और देह की बातों पर मन लगाता है, उसके काम है। गलतियों के पत्र 5:19-21 में हम देखते हैं, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिश न होंगे। यह एक कुरूप संतान है। कुलुसियों के पत्र 3:8-9 में पौलुस कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मत्ती सुसमाचार 15:19 में प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि बुरे विचार मन ही से निकलती है। जी हाँ, यह लज्जा की बात तो है, परंतु सच है कि परमेश्वर की संतान में उसका पुराना स्वभाव आदम का स्वभाव अविस्थित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दैहिक जीवन जीना पराजय एवं मृत्यु है। परमेश्वर की कोई भी संतान शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु जीना नहीं चाहेगी। उड़ाव पुत्र सूरों के बाड़े में पहुंच तो जाएगा, परंतु वहां रहना पसंद नहीं करेगा। वह वहां शांति नहीं पाएगा। एक दिन वह अवश्य कहेगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। मेरे मित्रों, वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन्हें नया जीवन प्राप्त होता है, उनका पुनर्जन्म हो जाता है, उनमें पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है, उन्हें मसीह की बातें अच्छी लगती है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और आगे पद 12 में पौलुस यह भी कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जी हाँ, ये उन बातों में से कुछ बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर की संतान ललकती है। आप और मैं अपने प्रयास द्वारा यह नहीं कर सकते हैं। यह तब ही संभव है जब हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें, तब ये गुण प्रकट होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें, पवित्र आत्मा को काम करने दें, अपने आप को उसके नियंत्रण में दे दें, ताकि वह मेरे जीवन में कार्य करे और मेरा पुराना स्वभाव नहीं परंतु नया स्वभाव प्रभावी होने पाए। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में एक निर्णय अवश्य लिया है, अवश्य लेंगे, और मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वचन पर विश्वास करें, उसके अनुसार चलें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।